नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली में G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे इतर वे विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कुवैत में अग्निकांड में मारे गए भारतीयों के पार्थिव शरीर लेकर भारतीय वायुसेना का विशेष विमान केरल के कोच्चि पहुंचा। सिक्किम में वर्षा और भूस्खलन से जुड़ी घटनाओं में 6 लोगों की मृत्यु और लगभग 2000 पर्यटक फंसे। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में 19 जून तक मूसलाधार बारिश जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया। अमेरिका और यूक्रेन ने G7 शिखर सम्मेलन से अलग दीर्घकालिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए और सऊदी अरब में 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा शुरू। दुनिया भर से 20 लाख लोग पहुंचे। दोपहर समाचार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली के अपुलिया में G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर 2 दिन की यात्रा पर कल रात इटली पहुंचे। भारत को आउटरीच देश के रूप में सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। G7 समूह में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमरीका शामिल हैं।
इस शिखर सम्मेलन में भारत की 11वीं और श्री मोदी की लगातार 5वीं भागीदारी होगी। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की नियमित भागीदारी यह दर्शाता है कि भारत शांति, सुरक्षा, विकास और पर्यावरण संरक्षण सहित वैश्विक चुनौतियों को हल करने की कोशिश में लगातार प्रयास कर रहा है। इस G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की भागीदारी पिछले वर्ष हुई G20 शिखर सम्मेलन के परिणामों पर और चर्चा करने का अवसर भी प्रदान करेगा। भारत के अलावा G7 अध्यक्ष के रूप में इटली ने अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, मिस्र, केन्या, मॉरिटानिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया, तुर्की और संयुक्त राष्ट्र सहित कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी आमंत्रित किया है। सुपर्णा सैकिया, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री यात्रा से अलग G7 देशों के नेताओं के साथ साथ आउटरीच देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दिमिर ज़ेलेंस्की के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली रवाना होने से पहले कहा कि सरकार भारत इटली रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और हिंद प्रशांत तथा भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कुवैत में आग लगने की घटना में मारे गए 45 लोगों के पार्थिव शरीर लेकर वायुसेना का विशेष विमान आज सुबह कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच गया। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने कहा कि सीमा शुल्क, आव्रजन और स्वास्थ्य से संबंधित सभी 45 शवों के दस्तावेजों को मंजूरी दे दी गई है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 31 शव उतारे गए, जिनमें से 23 केरल के, 7 तमिलनाडु के और 1 कर्नाटक का था। तमिलनाडु के अल्पसंख्यक कल्याण और अनिवासी तमिल कल्याण मंत्री जिंजी के एस मस्तान ने अपने राज्य की ओर से शव प्राप्त किए। प्रत्येक शव को उसके संबंधित मूल स्थान तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। अन्य शवों को उसी विमान से दिल्ली लाया जाएगा। शवों को आयात कार्गो रिसेप्शन क्षेत्र में रखा गया है, जिससे उन्हें श्रद्धांजलि दी जा सके। इसमें विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनके कैबिनेट सहयोगी, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने श्रद्धांजलि दी। कैबिनेट मंत्री जुएल ओराम ने आज नई दिल्ली में जनजातीय मामलों के मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। इसके बाद श्री ओराम ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि तीसरी बार मंत्रालय का नेतृत्व करना सम्मान की बात है। श्री जुएल ओराम ने आदिवासियों की बुनियादी जरूरतों के बारे में कहा कि मंत्रालय की प्राथमिकता आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के नेटवर्क को मजबूत करना और स्वास्थ्य क्षेत्रों को बढ़ावा देना है।
इतना बड़ा एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर अब एक नेटवर्क ट्राइबल एरिया में खड़ा हो रहा है, ये सबसे प्रायोरिटी काम है हमारा। हेल्थ सेक्टर में भी ट्राइबल काफी दिक्कत उनको जाता है, उसको करेंगे। इलेक्ट्रिफिकेशन तो काफी हो चुका है, लेकिन फिर भी अब जो बाकी है उसमें सोलर में हम लोग जाके उसको कवर करेंगे। कम्युनिकेशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कारण बहुत सारे गांव जुड़ गया है, लेकिन फिर भी इसमें से आर्टिकल 275(1) में से हम स्पेशल ग्रांट देके भी बहुत सारे पुल पुलिया हम लोग बनाते हैं, इरीगेशन का फैसिलिटी भी बनाते हैं।
सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सोरेंग चाकुंग निर्वाचन क्षेत्र से त्यागपत्र की घोषणा की है। श्री तमांग ने यह निर्णय हाल के चुनावों के दौरान दो निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी जीत के बाद लिया है। चुनाव नियमों के अनुसार परिणाम घोषित होने के 14 दिन के भीतर एक से अधिक सीट से त्यागपत्र देना आवश्यक है। उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले के बिनसर वन्यजीव अभयारण्य के जंगल में लगी आग से निपटने के लिए सेना के हेलीकॉप्टरों ने नैनीताल जिले के भीमताल से पानी पहुंचाया है। अल्मोड़ा जिले के बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में कल लगी भीषण आग के कारण 4 अग्निशमन कर्मियों की जान चली गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तरी सिक्किम में पिछले 60 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तीस्ता नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण राज्य के साकलांग इलाके में 2 पुल ढह गए। इससे उत्तरी सिक्किम के जोंगू क्षेत्र से संपर्क टूट गया है और लगभग 2000 पर्यटक फंस गए हैं। जिला मैजिस्ट्रेट हेम कुमार छेत्री ने वर्षा से नुकसान का आकलन करने के लिए कल बैठक की। मूसलाधार वर्षा से अम्बिंगथंग और काम्बिंग में 6 लोगों की मृत्यु हो गई। नामची और गैंगटॉक जिलों में भी तेज वर्षा के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें टूट गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार देश के उत्तरी भागों में गर्म हवाओं से राहत मिलने की अभी संभावना नहीं है। आज झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कुछ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ सोमा सेन ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि आज झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट के साथ गर्म हवा का प्रकोप जारी रहेगा।
वेरी हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हम उम्मीद कर रहे हैं सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और असम, मेघालय के लिए, जहां ऑरेंज से लेकर रेड अलर्ट चलेगी अगले 4 से 5 दिन यानी 14 से 19 जून तक। और हीटवेव रिलेटेड अलर्ट है, आज यूपी, बिहार और झारखंड यहां रेड अलर्ट चलेगी, कल से बिहार झारखंड में ऑरेंज अलर्ट हो जाएगी और उसके बाद से येलो अलर्ट, मगर उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट चलेगा 4 से 5 दिन तक।
अमरीका और यूक्रेन ने कल इटली में दीर्घकालिक सुरक्षा समझौता किया। G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दिमिर ज़ेलेंस्की ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे दोनों देशों के बीच सैन्य उपकरण, प्रशिक्षण और युद्धाभ्यास सहित सभी संभावित स्तरों पर सहयोग बढ़ेगा। हालांकि समझौते में यूक्रेन को विशिष्ट हथियार प्रणालियों की आपूर्ति का कोई वादा नहीं किया गया है। इससे पहले इसी तरह का समझौता ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी सहित 15 देशों ने यूक्रेन के साथ किया था। ये आकाशवाणी है। 5 दिवसीय हज यात्रा आज से शुरू हो गई है। दुनिया भर से लगभग 20 लाख लोग सऊदी अरब के मीना में एकत्रित हो रहे हैं। भारतीय तीर्थयात्रियों को हज सुविधा मोबाइल ऐप के जरिए सूचना और शिकायत दर्ज कराने की सुविधा प्रदान की जा रही है।
इस बार हज यात्रा के लिए 1,75,000 भारतीय जायरीन मक्का और मदीना पहुंचे हैं। इन लोगों के लिए इस बार भारत सरकार ने विशेष इंतजाम किए हैं। भारतीय हज कमेटी के माध्यम से पहुंचे 95% लोगों को मदीना के मरकाजिया क्षेत्र के होटलों में ठहराया गया है। यहां उनके जलपान की व्यवस्था भी की गई है। 33,000 जायरीनों को जेद्दा से मक्का तक पहुंचाने की व्यवस्था के अंतर्गत 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन की सुविधा देने वाला भारत पहला देश बन गया है। बिना महरम के पहुंचने वाली जायरीन के लिए खास प्रबंध किए गए हैं। इस बार यहां महिलाओं की सहायता के लिए महिला कर्मचारी नियुक्त की गई हैं। भारतीय हज यात्रियों के लिए पहली बार 24 घंटे बस सेवाओं की व्यवस्था की गई है। समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल।
सूर्य तुझे नमस्ते, धरती तुझे नमन।
21 जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर त्रिकोणासन का वीडियो साझा किया है। वीडियो में स्वास्थ्य लाभ के लिए इस आसन को सिखाने की जानकारी दी गई है। यह आसन कंधों, पीठ और एकाग्रता में सुधार के लिए किया जाता है।
त्रिकोण आसन, इस आसन को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसे करते समय हमारा शरीर यानी हाथ, पैर और रीढ़ की हड्डी एक त्रिकोण का आकार ले लेते हैं। तो इस आसन को करने के लिए आप सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने पैरों को परस्पर आरामदायक दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठाएं ताकि वो आपके दोनों कंधों की सीध में आ जाए। सुनिश्चित करें कि हाथ एकदम सीधे और एक स्तर पर हो, ऊपर नीचे या आगे पीछे नहीं।
सूर्य तुझे नमस्ते, धरती तुझे नमन।
भारतीय उच्चायोग और श्रीलंका के पूर्वी प्रांत पर्यटन ब्यूरो ने आज त्रिंकोमाली के मैकहेजर स्टेडियम में विशाल योग कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान लगभग 5,000 छात्रों और समाज के सदस्यों ने योगासन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व बांग्लादेश की सदाबहार योग संस्था ने इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र और भारतीय उच्चायोग के सहयोग से ढाका के लोकप्रिय रविन्द्र सरोवर पार्क में आज योग कार्यक्रम का आयोजन किया। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप क्रिकेट के ग्रुप सी में अफगानिस्तान ने पापुआ न्यू गिनी को 7 विकेट से हरा दिया है। ये मैच आज सुबह त्रिनिडाड के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला गया। एक रिपोर्ट।
दिल में है बस जीत का जज्बा, देश का मान बढ़ाना है।
अफगानिस्तान ने 15.1 ओवर में 3 विकेट खोकर 101 रन बना लिए। गुलबदी नायाब ने नाबाद 36 गेंदों पर 49 रनों की पारी खेली। इससे पहले पापुआ न्यू गिनी 19 ओवर 5 गेंदों में 95 रन के मामूली स्कोर पर सिमट गई। अफगानिस्तान के फजल हक फारूकी ने 3 विकेट झटके जबकि नवीन उल हक को 2 विकेट मिले। फारूकी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ अफगानिस्तान ने ग्रुप सी से मेजबान वेस्टइंडीज के साथ सुपर 8 में जगह पक्की कर ली। वहीं न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी और युगांडा अगले दौर में जाने से चूक गए।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली में G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे इतर वे विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कुवैत में अग्निकांड में मारे गए भारतीयों के पार्थिव शरीर लेकर भारतीय वायुसेना का विशेष विमान केरल के कोच्चि पहुंच गया है। सिक्किम में वर्षा और भूस्खलन से जुड़ी घटनाओं में 6 लोगों की मृत्यु और लगभग 2,000 पर्यटक फंसे हैं। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में 19 जून तक मूसलाधार बारिश जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अमेरिका और यूक्रेन ने G7 शिखर सम्मेलन से अलग दीर्घकालिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और सऊदी अरब में 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा शुरू हो गई है। इसमें भाग लेने के लिए दुनिया भर से 20 लाख लोग वहां पहुंच गए हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।